ओम शांति। आज के इस मध्याह्न के सत्र में हमारे बीच पधारे हैं हमारे आदरणीय राजयोगी भ्राता आत्म प्रकाश जी। एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप देश की हृदय स्थली नागपुर नगरी से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं। 1972 में आपने यह ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किया और उसके अगले ही वर्ष आपने लौकिक पढ़ाई की एमएससी की डिग्री प्राप्त की, जिसमें आप गोल्ड मेडलिस्ट रहे। और 76 में आप मधुबन में आए और अपना ईश्वरीय सेवा जीवन पूरा ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित किया। टोली, बोली और दृष्टि, यह हर ब्राह्मण का अधिकार है। इन तीनों में से जो टोली है उसकी आपूर्ति आपके डिपार्टमेंट से होती है। तीनों ही कैंपस में जो हमारे टोली किचन है, आप उसका मुख्य भार संभाले हुए हैं। और साथ साथ जो हमारी यूथ विंग है उसके आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी हैं। इसके अलावा ज्ञान योग की बहुत गहन रुचि, बहुत गहरा मनन चिंतन, बहुत योग और प्रयोग, जिसके आधार से आप देश विदेश में भ्रमण करते हुए बाबा का संदेश भी सबको देते हैं और बाबा की गहराई ज्ञान की गहराइयों से भी सबको लाभान्वित करते हैं। तो अनुभवी आत्मा हमारे बीच में आज अनुभव की अथॉरिटी क्या होती है इसे स्पष्ट करेंगे। आदरणीय भ्राता जी,
ओम शांति। अलौकिक अनुभव की अथॉरिटी, प्यारे बाबा का इशारा है कि समय के अनुसार अनुभव की अथॉरिटी बनते चलो, क्योंकि सत्य ज्ञान के सागर बाबा इतना उच्च कोटि का ज्ञान हमें देते हैं, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है अपने जीवन में बहुत सुंदर गहन अलौकिक अनुभव करना और कराना। ऑल माइटी अथॉरिटी के बाद दूसरी अथॉरिटी है अनुभव की अथॉरिटी। लेकिन ऐसी अथॉरिटी प्राप्त करने के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना होगा? अनुभव जो शब्द है, अनुभव, जब तक स्वयं को अनु नहीं समझते हैं, बिंदु नहीं समझते हैं, स्टार नहीं समझते हैं, तब तक इस ज्ञान मार्ग में कोई भी अलौकिक अनुभव हमें नहीं हो सकता। अनु समझते ही आपको अलौकिक अनुभव की खान मिल जाती है। अलौकिक अनुभव की वर्षा आप पर होती रहती है और ऐसे अनुभवी जो आत्माएं होती हैं उनको विशेष तीन लाभ होते हैं। पहला लाभ, ऐसे अनुभवी अथॉरिटी वाली आत्माएं आगे आने वाले हलचल के वातावरण में भी अचल अडोल रहेंगे। दूसरा लाभ, ऐसे अथॉरिटी वाली आत्माएं हलचल में भी अनेक आत्माओं की सेवा करने की क्षमता वाले होंगे। और तीसरा लाभ, ऐसे अनुभवी आत्माओं के माध्यम से ही परमात्मा की प्रत्यक्षता इस संसार में होगी, क्योंकि परमात्मा तो गुप्त है, दिखाई तो देते नहीं। कैसे संसार में प्रत्यक्ष होंगे, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। तो अनुभवी आत्माओं की परमात्म प्रत्यक्षता में अहम भूमिका होगी। अभी कोई पूछता है कितने वर्षों से ज्ञान में चल रहे हैं, बड़े फलक से हम कहते हैं 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से, बहुत अच्छी बात है, ये तो अपना भाग्य है। लेकिन पुराणों की निशानी है वो अनुभवी आत्माएं होती हैं, उनके पास अलौकिक अनुभव का धन बहुत होता है। कितने वर्षों से ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं ये महत्वपूर्ण बात नहीं है, लेकिन मोज आत्मा के पास कितनी अलौकिक अनुभव की पूंजी, अलौकिक अनुभव का धन कितना है, ये महत्वपूर्ण बात है। अभी मैं अनुभवी आत्मा बना हूं या नहीं कैसे पता चलेगा भाई, बोलिए। कोई पूछेगा तो कहते हैं मैं बहुत अच्छा अनुभवी, बताओ उसकी निशानियां भी तो कुछ होगी ना। लिखो, 5 निशानियां उसकी हैं। थर्मामीटर लगाते ही डॉक्टर कहता है बुखार कल से ज्यादा है, कल 103 था आज 104 है। तो अनुभवी आत्मा की पहली निशानी है, अनुभवी आत्माओं के चेहरे पर नारायणी नशा स्पष्ट दिखाई देता है, ईश्वरीय नशे की झलक और फलक स्पष्ट अनुभव होती है। जो धनवान होते हैं, दान घर में पड़ा होगा, बैंक में पड़ा होगा, लेकिन धन की अकड़ उनके चेहरे पर होती है, मैं बहुत धनवान हूं, चेहरा बोलता है। ऐसे अलौकिक अनुभव की अथॉरिटी वालों के चेहरे पर वो ईश्वरीय नशा स्पष्ट दिखाई देता है, इनके पास बहुत अलौकिक अनुभव का धन बहुत है, ठीक है। और संपन्नता और संतुष्टता उनके चेहरे पर हर कोई पढ़ लेता है। संपन्नता और संतुष्टता, मैं बहुत संतुष्ट हूं, मेरा बाप सागर है, उस सागर से मैंने बहुत कुछ पा लिया है, मैं संपन्न हूं। संपन्नता और संतुष्टता उसके चेहरे पर हर कोई पढ़ लेता है। दूसरी निशानी, ऐसे अलौकिक अनुभवी आत्माओं के पास एक कला होती है, वो अपने अलौकिक अनुभव के आधार पर अपने जीवन को रोचक और रोमांचित बनाते जाते हैं। कई बाबा के बच्चे ज्ञान मार्ग में आते हैं और दो चार साल के बाद चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि अनुभव की कमी। मुझे कुछ अनुभव होता ही नहीं, जाके क्या करूं वहां। लेकिन जिनके पास बहुत सुंदर अलौकिक अनुभव होते हैं, वो अपने जीवन को रोचक और रोमांचित, अपने इंटरेस्ट को, रुचि को बढ़ाते जाते हैं। कभी भी उनकी रुचि कम नहीं होती है। दादियां हमारी 80-82 वर्षों से चल रही हैं, लेकिन कभी भी उनके मुख से नहीं निकला कि ये ब्राह्मण जीवन कभी बोर होता है। हमेशा ग्राफ ऊपर गया, क्योंकि उनके पास अनुभव थे बहुत। ठीक है, तीसरी निशानी, ऐसे अनुभवी आत्माएं हमेशा आत्मोन्नति के मगन में सदा मस्त रहते हैं। अपनी घोट तो नशा चढ़े, ये उक्ति उनके जीवन में स्पष्ट दिखाई देती है। वो अपने में ही मस्त रहते हैं, इसलिए हर कोई उनके कंपनी में रहना चाहता है। इनके कंपनी में रहने से कुछ ना कुछ नवीनता हमें मिलेगी, कुछ नई आइडिया मिलेगी, आगे बढ़ने के लिए कोई युक्ति मिलेगी, क्योंकि वो आत्मोन्नति में ही मगन रहता है। समय और संकल्प का खजाना कभी भी वेस्ट नहीं करता है। चौथी निशानी, ऐसे अनुभवी आत्माएं दुआओं के पात्र बनते जाते हैं। जब वो अपने अलौकिक अनुभव दूसरों के साथ शेयर करते हैं, तो सुनने वालों को भी ऐसे गहन अनुभव करने के लिए हिम्मत आती है, साहस आता है और उमंग आता है। मैं भी ऐसे गहन अनुभव कर सकता हूं, कर सकती हूं। वो स्वयं तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन अनेकों को आगे बढ़ाते हैं, प्रेरणा के स्रोत बनते हैं, और जितनों को आगे बढ़ाते हैं उनको कमीशन मिलता है, दुआएं मिलती है। हमें 3 सर्टिफिकेट हर एक को लेना है, मन पसंद, लोक पसंद, प्रभु पसंद। अनुभवी आत्माओं को 3 सर्टिफिकेट बहुत सहज मिल जाते हैं। मन पसंद, आप स्वयं को पसंद तब करेंगे जब आपके पास बहुत सुंदर अनुभव होंगे, बहुत सुंदर स्थिति होगी। घोड़े की तरफ भाग रहे, सेवा खूब कर रहे, लेकिन स्थिति नहीं होगी तो आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, स्वयं से आप संतुष्ट नहीं होंगे। स्थिति बहुत अच्छी है, मैं बहुत खुश हूं, और ऐसी अनुभवी आत्मा अनेक आत्माओं को आगे बढ़ाती जाती है, तो लोग उसको पसंद करते हैं। इस सबको मदद करता है आगे बढ़ाने के लिए, इसलिए लोग भी उसको पसंद कर देते हैं। और वो ऊपर वाला भी देखता है, मैं जो ज्ञान दे रहा हूं, ये ज्ञान अपने जीवन में प्रैक्टिकल ला रहा है, अनुभवी बन रहा है और अनेकों को अनुभवी बना रहा है, ऊपर वाला भी अपने दिल में उसको स्थान दे देता है, पसंद कर लेता है। तो 3 सर्टिफिकेट उसको बहुत सहज मिलते हैं, ऐसे अनुभवी आत्मा को। पांचवी निशानी, ऐसा अनुभवी आत्मा कभी भी माया दुश्मन से धोखा नहीं खाता है। एक स्लोगन उनके जीवन में प्रैक्टिकल होता है, अनुभव की पूंजी सफलता की कुंजी चाबी। अनुभव की पूंजी ही सफलता की कुंजी है, चाबी है। वो निर्विघ्न रीति से आगे ही आगे बढ़ता जाता है, आगे ही आगे बढ़ता जाता है, इधर उधर माया की गलियों में नहीं भटकता है, दुश्मन उसके साथ चीटिंग नहीं कर सकता है। माया अपनी उन्नति के शिखर के तरफ आगे ही आगे बढ़ता जाता है। इसलिए कहावत है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे, हाँ जी, वो सातवें आसमान में पहुंचता है, परम धाम है, वहां कोई नहीं पहुंच सकता है, अनुभवी पहुंच सकता है। एक कवि तो यहां तक पहुंचता है, सूर्य चंद्र तारा तक बस। तो अनुभवी हमें बनना है, लेकिन कौन सी बातों में बनना है, कौन से अलौकिक अनुभव हमारे पास होने चाहिए। 10 एरियाज है, उन एरियाज में अंत तक जब तक संपूर्णता की मंजिल पर नहीं पहुंचते हैं, इन 10 बातों में हमें अनुभवी बनते जाना है, बनते जाना है, कभी थकना नहीं है। गाड़ी कितने साल से चला रहे भाई, बताओ प्रभु भाई, कितने साल से चला रहे हा? पहला दिन याद करो, जिस समय कोई पढ़ा सिखा रहा था, कांपते थे, क्या करो, स्टीयरिंग पकड़ो, अच्छा क्या, फिर बाद में क्या करो। और अभी 10 साल के बाद बॉम्बे से अब माउंट आबू आए, बढ़िया एंजॉय करते हैं, एक्सपर्ट हो गए, अनुभवी बन गए। छोटी मोटी कुछ भूले होती थी वो भी भूले निकल गए। तो 10 एरियाज में हमें अंत तक अनुभवी बनते जाना है। पहला एरिया, परमधाम निवासी बनने का अनुभव हमें अंत तक करते जाना है। हमारा घर कौन सा है? परमधाम है। तो घर का ज्ञान तो मेरे पास है, लेकिन वहां जाता ही नहीं और वहां अनुभव करता ही नहीं वाइब्रेशन, वहां मैं रहता ही नहीं, तो उस घर पर मेरा अधिकार कैसे होगा? तो वहां जाना है और वहां के वायुमंडल को, वातावरण को, सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश ही है प्रकाश, उसको फील करना है, अनुभव करना है, और अनुभव की परसेंटेज को बढ़ाते जाना है। नए नए बच्चे हैं, 10% भान से जाते हैं, फिर 20% भान से जाते हैं। वहां हमारा लक्ष्य है 100% भान हमारा वहां हो और 0 यहां हो, ये हमारा लक्ष्य है। ब्रह्मा बाबा कुटिया में कर्माती स्थिति के समय जब थे, कोई भी बाबा से मिलने जाता था, बाबा के नैनों से स्पष्ट दिखाई देता था, बाबा केवल यहां तन से बैठे हैं, मन से पूर्णतया परम धाम में बाबा के पास ट्रांसफर कर चुके हैं। आंखें बताती थी बाबा यहां नहीं है। तो घर की खींच हो, मुलुन के नजदीक जाते हैं ना, बहुत खुशी होती, हाँ अभी घर के तरफ जा रहे हैं, तो ये घर है मेरा, खींचो। तो बार बार वहां जाना है और अनुभव को खूब अच्छी तरह से बढ़ाते जाना है। दूसरा क्षेत्र, सूक्ष्म वतन वासी बनने का अनुभव हमें खूब अच्छी तरह से बढ़ाना है। अभी हमारा घर कौन सा है, हैं जी, बोला ना, मधुबन है। किरण बहन बताओ, मधुबन है। टाइटल लेके घूमती है, ब्रह्मा कुमारी फलानी, ब्रह्मा कुमार फलाना, तो किसके बच्चे हो गए भाई, ब्रह्मा बाबा के हो गए। जहां मेरा बाप रहता है वो मेरा, तो मेरा घर कौन सा है, सूक्ष्म वतन। सूक्ष्म वतन का ज्ञान होना, सूक्ष्म वतन में जाकर वहां के वाइब्रेशन को फील करना और उसको यूज करना, बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है। बाबा ने सूक्ष्म वतन रचा ही है हमारे लिए, संगम युग के लिए। '91 में मैंने गुलजार दादी जी का इंटरव्यू लिया था, ये जो हिस्ट्री हॉल है ना, उनके पीछे उनका रूम था। 3 घंटे दादी के साथ बैठा, प्रश्न पूछा, आखिर भी वो सूक्ष्म वतन कैसा है, आपके तन में बाबा कैसे आते हैं, वो सारी विधि मुझे स्पष्ट बताइए। मैं आर्टिकल लिखने जा रहा था तो दादी जी ने बताया था, ये 5 तत्वों की दुनिया है, इससे परे एक ऐसी दुनिया है जहां हमेशा सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश रहता है। जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा आसमान में रहता है और धरती को श्वेत प्रकाश से जगमगाता है, ऐसे हजारों पूर्णिमा के चंद्रमा का शीतल प्रकाश उस दुनिया में सदा रहता है। और वहां जो भाषा होती है फरिश्तों की, वो नैनों के इशारे की और होठों के मूवमेंट्स की होती है। इशारे से फरिश्ते बातें करते हैं, मनुष्य मुख से बोलता है, फरिश्ते इशारे से। और तीसरी बात, वहां की जो कारोबार चलती है वो संकल्प शक्ति के आधार पर चलती है। कोई भी दर्श बाबा को इमर्ज करना है, 1 सेकंड में बाबा संकल्प शक्ति के आधार से करता है इमर्ज, और बच्चों को उसका अनुभव कराते हैं और बच्चों के लिए मैसेज आगे बढ़ाने के लिए भेजते हैं। और मजे की बात यह है, जिस दिन से हम बाबा के बच्चे बने हैं उस दिन से हमारा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप उस दुनिया में सदा रहता है। बाबा क्या देखते हैं, ये पुरुषार्थ स्वरूप और ये संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप किस स्पीड से नजदीक आ रहे हैं, बाबा ये वतन में देखते हैं। क्या हुआ, साकार ब्रह्मा बाबा यहां थे, उन दिनों की बात है, एक संदेशी बहन ऊपर चली गई सूक्ष्म वतन में, तो उसने लाइट का ब्रह्मा बाबा देखा वहां, वो कंफ्यूज हो गई, ब्रह्मा बाबा तो मधुबन में है, ये कहां से आ गए दूसरे ब्रह्मा बाबा। उसने नीचे आके बाबा को बताया, बाबा को भी समझ में नहीं आवे। बाबा ने दूसरी बार भेजा उसको, तीसरी बार भेजा, शिव बाबा ने कहा वो है संपूर्ण ब्रह्मा बाबा और ये है पुरुषार्थी ब्रह्मा बाबा। जब ये पुरुषार्थी ब्रह्मा बाबा संपूर्ण हो गए तो अभी वहां एक संपूर्ण बाबा सदा रहते हैं। तीसरा एरिया, वैकुंठ वासी बनकर हमें रहना है। बाबा ने सतयुग में हमारा जीवन कैसा होता है अमृत वेले से रात्रि तक पूरा समझा दिया है। वो केवल ज्ञान के लिए नहीं सुनाया है, हमें उसको अनुभव करना है। कैसे हम वहां अपना जीवन बिताएंगे, कैसी मस्ती अलौकिक होगी, कैसे दिव्य गुणों से श्रृंगार होंगे, कैसे प्रकृति हमारी दासी होगी, वो हमें अभी अनुभव करना है। जितना अनुभव करते जाएंगे उतने संस्कार हमारे दैवी आत्मा में भरते जाएंगे और वो संस्कार हम परमधाम में ले जाएंगे और उसके आधार पर ऐसे रॉयल परिवार में हमारा जन्म ऑटोमेटिक होगा। घर जाने के पहले वो संस्कार मुझे आत्मा में धारण करने हैं, इसलिए बाबा ने वो ज्ञान दिया। आज भी बाबा ने क्या बोला बाबा मुरली में, देवताओं के मन में ऐसे खराब संकल्प नहीं चलते हैं, देवताओं के मुख से ऐसा शब्द नहीं निकलता है। तो हम सभी देवता हैं, ओनार देवता है, अभी से हमारे जीवन में वो धारणाएं होनी चाहिए, अनुभव करनी चाहिए लोगों ने। ठीक है ना। चौथा एरिया, चौथा एरिया है आत्म अभिमानी स्थिति को पक्का करते जाना। आत्मा आत्मा सुन सुन के हम थक चुके हैं। आत्मा सुनते हैं ना, ऐसा लगता है बाबा को कुछ सोचते ही नहीं, हमें जब वही वही रटाता रहता है। लेकिन वही सबसे महत्वपूर्ण पाठ है और वही अंतिम पाठ है। कितनी बार गुलाब जामुन खाया है जी? गुजराती कड़ी कितनी बार खाई? आज खिलाएंगे आपको, खाएंगे ना, बड़े चाव से खाएंगे। तो ऐसी आत्मा हमें समझने के लिए थकना नहीं है। हमारा लक्ष्य है संपूर्ण आत्म अभिमानी बनना, केवल आत्म अभिमानी नहीं, संपूर्ण 100% आत्मा का भान हो, 0% देह का भान हो, ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारी मंजिल है। कहां तक पहुंचे पूछो अपने से, कितना अभ्यास करना है चेक करो। ब्रह्मा बाबा ने शुरू दिन से लेकर अंतिम दिन तक इस अभ्यास को नहीं छोड़ा, अंतिम दिन तक बाबा इस अभ्यास को करते रहे। तो हमें खूब अच्छी तरह से रुचि से इस अभ्यास को पक्का करते जाना है, क्योंकि यही पहला पाठ है और यही अंतिम पाठ है और सबसे महत्वपूर्ण यही पाठ है। कहते जड़ है तो झाड़ है, तो जड़ आपके पास है तो झाड़, दिव्य जीवन रूपी झाड़, दिव्य गुणों से फला फूला झाड़ आपके पास है। तो आत्मा 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 रटते जाना है, रटते जाना है। आत्मा के गुणों को बहुत अच्छी तरह से हमें अनुभव करते जाना है। जैसा जैसा अनुभव बढ़ता जाएगा, आत्मा का प्रकाश, आत्मा का आभा मंडल बढ़ता जाएगा, तीव्र होता जाएगा, औरा बढ़ता जाएगा। इसलिए कहते जैसी स्थिति वैसी उपस्थिति। जहां हम जाते हैं हमारा ओरा काम करने लगता है, ऑटोमेटिक करता है। तो बहुत रुचि से मधुबन में आप आए हैं, ये धरनी सारे ग्लोब पर सबसे पावरफुल सी स्थान है, जहां आपके कदम पड़े हैं, यहां सबसे पावरफुल सारे ग्लोब पर। कुछ पुण्य कर्म है इसलिए इस धरनी पर पहुंचे हैं। पार्टी में आते हैं तो एक घंटे के लिए साइट सीन कर लेने के लिए आते हैं, और आप 3 दिन से यहां आए, 4 दिन से यहां आए, खूब अच्छी तरह से लाभ लो इसका। एकांत में बैठो, आत्मा का अभ्यास घटते जाओ, घटते जाओ, रटते जाओ, रटते जाओ। जब मैं मधुबन में आया 76 में, सारा दिन किचन में काम करता था, सवेरे 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक, भोली दादी को खुश करने के लिए सारा दिन लगा रहता था। और रात को 10 बजे वो ट्रेनिंग सेक्शन के छत पर जाके बैठता था, एक घंटा, दो घंटा, तीन घंटा केवल आत्मा का अभ्यास करता था। उस अभ्यास ने ये स्थिति का फाउंडेशन मेरा जैसे पक्का किया। घंटों घंटों बैठता था। पांचवा एरिया, स्वामानधारी होकर रहना। स्वामान में हमें स्थित रहना है। इस सभा में होन राजे महाराजे रानी महारानियां बैठी है, ऑर्डिनरी लोग नहीं है। इस सभा में एक से एक बढ़कर है। सतयुग में वो सिंहासन मिलते ही आपके आत्मा में चेहरे पर वो रुहाब, वो नशा ऑटोमेटिक अनुभव होना चाहिए। लेकिन कब होगा, कैसे होगा, क्या करना होगा उसके लिए अभी हमें स्वमान में स्थित रहने का अभ्यास खूब करना होगा। बाबा ने हमें जो स्वमान का सिंहासन दिया है, इस सिंहासन को हमें छोड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई कितना भी ग्लानी करे, कुछ भी करें, ये सिंहासन मैंने छोड़ना नहीं है, भगवान ने मुझे दिया है। और अच्छी तरह से बैठो, 100% स्वमान में मुझे स्थित रहना है। केवल स्वमान का पॉइंट दोहराना नहीं है, केवल स्वमान में स्थित होने का अभ्यास नहीं करना है, लेकिन उस स्वमान का खूब अच्छी तरह से आनंद लेना है, अनुभव करना है। मैं आत्मा राजा हूं और समान के सिंहासन धारी हूं। तो धीरे धीरे क्या होगा, ईश्वरीय नशे का परसेंटेज बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ईश्वरीय नशा बढ़ रहा है या नहीं कैसे पता चलेगा भाई, हैं जी, कैसे पता चलेगा भारती बहन, खुशी से शराबी की आंखें बता दी, ये लाल आंखें, इसके इसने बहुत पिया है, इसने दो बोतल चढ़ाई लगता है, इसने आंखें लाल है, ऐसे ईश्वरीय नशे की झलक आंखों में दिखाई दे, छिपते नहीं। जैसा जैसा समान में हम स्थित रहते हैं, नशा धीरे धीरे बहुत अच्छी तरह से बढ़ता जाता है, अनुभव होता है। बाबा का फोटो आपने वो देखा होगा, बाबा टांग पर टांग ले रखकर ऐसे बैठे शेर की तरह, देखा है ना फोटो बाबा का, हिस्ट्री हॉल में देखना, ऐसे बैठे शेर की तरह, विश्व का राज महाराजा। तो नशा तो होगा ना भाई। तो संगम युग में हमें ऐसा रूहानी नशा अभी अनुभव करना है और संस्कार में उसको भरना है। स्वमान धारी अर्थात धारण करना, समान के टाइटल को जीवन का अभिन्न अंग अनुभव करना, उसको कहेंगे समान धारी बनना। ठीक है। छठवां एरिया, परमात्म अभिमानी बनने का अनुभव हमें बहुत अच्छी तरह से बढ़ाते जाना है। परमात्म अभिमानी बनना अर्थात परमात्मा के संग में बैठकर उनके कंबनी का खूब आनंद लेना, उनकी कंपनी को बहुत एंजॉय करना। दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता परम धाम में बैठे हैं बाबा, और उनके बाजू में मैं आत्मा बैठी हूं। और जैसे सागर के किनारे संध्या के समय जाते हैं, ठंडी ठंडी लहरें आती हैं, ऐसे हमें शांति के सागर, आनंद के सागर, प्रेम के सागर के समीप किनारे पर बैठकर खूब एंजॉय करना है। एकदम समीप बैठना है और एंजॉय करना है। और उसके परसेंटेज को बढ़ाते जाना है। बाबा के पास समीप बैठने के परसेंटेज को हमें बढ़ाते जाना है। 10% वाहन से आप बैठे हैं, फिर 40% वाहन से आप बैठे हैं, हमारा लक्ष्य है 100% वाहन से बाबा के पास कंपनी में बैठना, ये हमारी मंजिल है। आपके जीवन के सबसे खुशनुमा पल कौन से है? हाँ जी, गोल्डन मोमेंट्स कौन से है जी, बोलो ना। जब मैं आत्मा परम धाम में बाबा के बाजू में स्वयं को बैठी हुई अनुभव करती हूं, ये पल सबसे खुशनुमा पल है। ये पल मेरे जीवन के गोल्डन मोमेंट्स हैं। ये पल मेरी पूंजी है। इन पलों को मुझे बढ़ाते जाना है, क्योंकि सारे कल्प में यही पल सबसे बड़े हैं मेरे, है ना मीना बहन? उन पलों को हमें बढ़ाते जाना है। बस ठाकुर बनकर एक ठिकाने पर बैठ जाओ और आनंद ले लो, मस्ती ले लो। तो बाबा के पास बैठने की अनुभूति को हमें बढ़ाते जाना है। फिर सातवां एरिया, सातवां ना, फरिश्ता स्थिति की अनुभूति को हमें बढ़ाते जाना है। बार बार, अनेक बार करते जाना है इसकी अनुभूति को, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? संपूर्ण फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करना, ये हमारा लक्ष्य है। केवल फरिश्ता नहीं, संपूर्ण फरिश्ता, अर्थात 100% दिव्य प्रकाश पुंज की काया अनुभव करना और 0% ये स्थूल काया की अनुभूति करना। सारे रिश्ते मेरे अर्शवासी भगवान के साथ है। रिश्ता, कोई उसका रिश्ता फर्शवासियों के साथ नहीं, सारे रिश्ते अर्शवासी के साथ, बाबा के साथ। ये प्रयोगशाला है, आप प्रयोगशाला में बैठे हैं, आप यहां से डाइनिंग में जाओ ना, प्रयोग करो कि मुझ आत्मा ने लाइट का शरीर धारण किया है और लाइट के जमीन पर चल रहा हूं, पर स्थाई लगोगे, बिल्कुल अंतर्मुखी होकर आप चलो, बातें नहीं करो, बातें तो हमेशा अटक करते रहते हैं। बहुत मजा आएगा आपको, क्योंकि ब्रह्मा बाबा यहां जहां पर भी गुजरते थे ना, सारा दिन थोड़ी बैठे रहेंगे, इधर उधर कारोबार चलते थे तो गुजरते थे ना, तो लगता था बाबा एकदम फरिश्ता ही घूम रहे हैं। इसलिए कहते हैं चाल फरिश्ते जैसी हो और हाल खुशहाल हो। नेक्स्ट आठवा एरिया, आठवा सातवा, आठवा एरिया है हर गुण की और हर शक्ति की अनुभूति करते जाना। कोई गुण मुझे मिस नहीं करना है, कोई शक्ति मुझे मिस नहीं करना है, उसका अनुभव मेरे पास होना चाहिए। क्योंकि मेरा लक्ष्य क्या है, सर्वगुण संपन्न, सर्व शक्तियों से संपन्न बनना। अष्ट शक्तियों की अनुभूति मुझे सारे दिन भर में कर्म क्षेत्र पर करते जाना है, और जो 36 गुण की लिस्ट है वो सारे मुझे जीवन रूपी पेड़ पर धारण करना है। कोई भी गुण मुझे मिस नहीं करना है। कोई मिस, कोई बात नहीं, उसको जीवन में धारण करने के लिए दो चार मास, एक मास, दो टाइम देके उसको धारण करो। ठीक है। और दसवां नौवां एरिया, मनसा सेवा का अनुभव मुझ आत्मा के पास होना चाहिए। क्योंकि आप देखना दो चार साल के बाद में केवल मनसा सेवा का ही बोलबाला चलेगा, सारी सेवाएं ठप हो जानी है। जैसे कोरोना काल में कुछ नहीं चलता था, केवल मनसा का था सेवा का पार्ट, और आगे चल के तीन चार साल के बाद देखना मनसा सेवा का ही बोलबाला होगा। तो मेरे पास मनसा सेवा के अनुभव बहुत अच्छी तरह से होने चाहिए। क्योंकि दादियां मनसा सेवा करती है, उनको सफलता मिलती है, और हम मनसा सेवा करने लगते हैं तो हमारे मन में थोड़ा संकल्प आता है, पता नहीं सफलता मिलेगी या नहीं। क्यों भाई? जानकी दादी जी अमृत वेले पाकिस्तान को सकार दे रही थी, और उसी दिन बाबा आए, और शाम को बाबा कहते आज सवेरे जनक बच्ची पाकिस्तान को सकार दे पाओ। देखो वहां बात पहुंच भी गई ऊपर मुरली में, बाबा कह रहे। क्योंकि मनसा सेवा करने का साधन उनका बहुत शक्तिशाली था, और दूसरी बात मनसा सेवा के अनुभव उनके पास बहुत थे, इसलिए उनको बहुत अच्छी तरह से सफलता मिलती रही। तो मुझे भी सफलता इसमें मिलती रहे, इसलिए मुझे बहुत अच्छी तरह से ये मनसा सेवा करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। मनसा सेवा करना माना होल सेल बिजनेस करना। रिटेल बिजनेस करने का समय समाप्त हो चुका है, वर्ल्ड वाइड होल सेल बिजनेस करने का समय चल रहा है। केवल मुझे बॉम्बे की नहीं सेवा करना है, पूरे वर्ल्ड की करना है। मेरा बाप कौन है? विश्व कल्याणकारी। मैं आत्मा उसका बच्चा, मास्टर विश्व कल्याणकारी हूं। जहां आवश्यकता है उड़कर चले जाओ, मनसा सेवा के द्वारा शांति शक्ति देकर आओ। तो बाबा ने स्पष्ट कहा है कि अभी मनसा सेवा बढ़ाते चलो, क्योंकि जानी जानन हार बाबा स्पष्ट जानता है भविष्य में ये सेवा बच्चों को बहुत करनी होगी, इसलिए कोरोना काल में बैठक का योग करने का बाबा ने बहुत चांस दिया। मैंने कहते थे ना सेंटर पर बहुत संभालना पड़ता है, सेवा करना पड़ता है, बाबा ने कहा अभी बैठक का योग खूब करो। ठीक है ना। और दसवां एरिया, भगवान के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति मुझे बढ़ाते जाना है। कोई संबंध मेरा मिस ना हो।
क्यों भाई, क्या जरूरत है इसकी? हाँ जी,
एक संबंध के द्वारा 100% प्यार में बाबा की तरफ ट्रांसफर कर सकता हूं, कर सकती हूं, तो सर्व संबंध जरूरत क्या है मुझे अनुभव करने की? हाँ जी, हाँ, अंत में वही पेपर आएगा, संबंध खींचेगा हमें ऐसे, हाँ जी, लौकिक संबंध बीच में आएंगे। कुछ गहरा राज सुना हो, क्यों जरूरत है ये? इसके पीछे गहरा राज ये है कि 84 जन्मों के हमारे रोल अलग अलग होंगे। हर जन्म में बहन नहीं बनेंगे, हर जन्म में मां नहीं बनेंगे। आधे जन्म हमारे मेल के, आधे जन्म फीमेल के, और हर जन्म में हमारा अलग अलग रोल होगा। उस जो भी रोल मिलेगा वो हमें बजाना होगा, लेकिन वो संस्कार हमें अब भी भरने हैं घर जाने के पहले। कैसे भरेंगे? भगवान के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति करते हुए। ये राज उसके पीछे है। गाय का बछड़ा जन्म लेते ही दूध पीने के लिए उसके स्तन के पास पहुंचता है, उसको कोई बोलता है? ऑटोमेटिक दौड़ता है, क्योंकि संस्कार है। इससे हमारे आत्मा में भी ये सारे संस्कार भरने हैं। अभी तो कहने का भाव है, हमें विभिन्न प्रकार के एरिया में अलौकिक अनुभव को बढ़ाते जाना है, थकना नहीं है। ऐसी फीलिंग हो कि मुझ आत्मा के पास बहुत अलौकिक अनुभव की स्टॉक है, पूंजी है, अथॉरिटी है। एक सेकंड में अश्वर स्थिति में स्थित हो जाए, एक सेकंड में हम सोमान में स्थित हो जाए, एक सेकंड में फरिश्ता स्थिति में स्थित हो जाए। तो इस तरह से हमें अलौकिक अनुभव की पूंजी को बढ़ाते जाना है। ये पुराणों की निशानी है, जितने पुराने होते हैं बच्चे बाबा के, उतने उनके पास अलौकिक अनुभव का धन बढ़ता जाता है। ये उसकी निशानी है। ठीक है ना? तो तात लगी रहे, जैसे बिजनेसमैन होता है ना, उसको पैसे ही दिखाई देता है हमेशा, बिजनेस इतने उसी में बिजी रहता है। हमारे मन में यही तात लगी रहे, कैसा मैं सुंदर अलौकिक अनुभव जमा करता रहूं, बढ़ाता रहूं, बढ़ाता रहूं। एक स्लोगन कभी भी ब्राह्मण जीवन में भूलना नहीं, अंत तक भूलना नहीं, जैसी स्थिति वैसी स्तुति होती है। ये स्लोगन कभी भी नहीं भूलना, जैसी स्थिति वैसी स्तुति। हर कोई चाहता है मेरी स्तुति हो, लेकिन जैसी स्थिति होगी वैसी ही स्तुति होगी, जैसी स्थिति वैसी उपस्थिति होगी, जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था होगी, आत्माओं के द्वारा, प्रकृति के द्वारा। मधुबन में आते ही ब्रह्मा बाबा खड़े दिखाई देते हैं, शांति स्तंभ के रूप में खड़े है बाबा। कैसे? स्तंभ के रूप में। स्तंभ अर्थात अच्छा लडोल स्थिति, और स्तंभ अर्थात बहुत ऊंची स्थिति। लाखों करोड़ों आत्माओं को प्रेरणा प्रदान करने वाली ऐसी ऊंची स्थिति मुझे भी ब्रह्मा बाप समान बनना है, बनाना है। ये मेरी प्रॉपर्टी है। सेवा तो करना हमारा काम है ही है, वो धर्म है, कर्म है, लेकिन सेवा के खिलौने से खेलते खेलते मैंने वो स्थिति बनाना है। ये लक्ष्य हमारा उस पर हो।
ठीक है ना, करना है भाई अनुभव, बोलो करना है योग का अनुभव, बोलो ना, आवे नहीं ना आवे नहीं, सुस्त तो नहीं हो गए ना, करना है मीनाक्षी बहन, तो सब खड़े हो जाओ फिर थोड़ा।
अभी 15 मिनट के लिए एकदम पावरफुल स्थिति बनाएंगे, थोड़ा खुले खुले बैठ जाएंगे, सीधा बैठेंगे, स्ट्रेट एकदम चुस्त और मस्त होके बैठेंगे। ओम शांति। इस शरीर रूपी महल में मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा राजा। ब्रुकुटी के अकाल तख्त पर विश्व कल्याणकारी सिंहासन पर विराजमान होकर स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति कर रहा हूं। मैं आत्मा राजा, पवित्रता का ताजधारी हूं। पवित्रता का दिव्य और भव्य ताज मैंने धारण किया है। राजाओं का राजा बनाने वाले बाप ने मुझे स्वराज प्रदान किया है। राजा के नशे की झलक और फलक मेरे चेहरे पर स्पष्ट अनुभव हो रहे हैं। मैं आत्मा राजा, स्थूल देह रूपी महल से बाहर निकलकर बुद्धि रूपी पुष्पक विमान में बैठकर तीनों लोगों की सैर पर निकल चुका हूं। इस विश्व के गोले से पार चंद्र सूर्य तारागण से भी पार उड़ता हुआ जा रहा हूं। ओह, मैं आत्मा राजा फरिश्तों की दुनिया में पहुंच चुका हूं। जहां चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है, पवित्रता ही पवित्रता है। मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा राजा ने बहुत सुंदर फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। कितनी सुंदर, कितनी हल्की फुल्की ड्रेस है यह। फरिश्तों के शहंशाह ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे डियरेस्ट डैड अति प्यारे शिव पिता भी उनके प्रकृति में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाप दादा मुझसे अति स्नेह भरी दृष्टि से निहार रहे हैं। मैं फरिश्ता बाबा की दृष्टि का भरपूर आनंद ले रहा हूं। असीम शक्तियां ग्रहण कर रहा हूं। बाबा की बाहों में समा चुका हूं। परम सुख की परम आनंद की अनुभूति हो रही है। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी बिंदु आत्मा राजा निराकारी दुनिया की ओर पुष्पक विमान में बुद्धि रूपी पुष्पक विमान में बैठकर उड़ता हुआ जा रहा हूं। निराकारी दुनिया में पहुंच चुका हूं जहां चारों ओर सुनहरी लाल ये लाल सुनहरी लाल ये लाल दिव्य प्रकाश है। शांति ही शांति परम शांति है। कितना प्यारा घर है यह मेरा परम धाम। मेरे प्राणों की प्राण मेरे प्राणेश्वर सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिव पिता मुझ आत्मा के समक्ष विराजमान है। मैं आत्मा बाबा की सुंदर छवि को दिव्य चक्षु से निहार रही हूं। उनकी सुंदरता का आनंद ले रहे बाबा मेरे नयनों के नूर बन चुके हैं। मेरे दिल की दुनिया में मेरे दिलाराम मेरे दिलवर हजारों सूर्यों से शक्तिशाली है। ज्ञान सूर्य शिव पिता से अत्यंत शक्तिशाली किरणों की बरसात मुझ आत्मा पर हो रही है।
होती ही जा रही है। मैं आत्मा ज्ञान सूर्य शिव पिता से अनंत शक्तियां प्रचंड शक्तियां असीम शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं, ग्रहण करती ही जा रही हूं। योग की प्रखर अग्नि में मेरे जन्म जन्मांतर के पाप पल भर में भस्म हो रहे हैं, भस्म होते ही जा रहे हैं। मैं आत्म ज्योति स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं। सचमुच मेरे जीवन के सुनहरे पल है यह, जो मैं आत्म ज्योति डायरेक्ट ज्योति सागर भगवान के सानिध्य में स्वयं को अनुभव कर रही हूं। वारे में वहां मेरे बाबा, वहां मेरा भाग्य, शक्तियों से भरपूर आत्मा, निराकारी दुनिया से वापस बुद्धि रूपी पुष्पक विमान में बैठकर वाया सूक्ष्म वतन साकारी दुनिया की ओर आ रही हूं और पुनः स्थूल शरीर रूपी महल में अपने समान के सिंहासन पर विराजमान हो चुकी हूं। मज शक्तिशाली आत्मा राजा से शक्तियों की सजीव तरंगे इस वायुमंडल में चारों ओर फैल रहे हैं। वायुमंडल को प्रकंपित करके शक्तिशाली बना रहे हैं। मेरे मस्तक पर मस्तक मणि आत्मा चमक रही है। अष्ट शक्तियों की चमक मस्तक मणि आत्मा से चारों ओर फैल रही है। जैसे मेरे शिव पिता निराकार ज्योति बिंदु है, वैसे मैं आत्मा उनकी संतान भी निराकार ज्योति बिंदु हूं, निराकार ज्योति बिंदु, निराकार ज्योति बिंदु। ओम शांति शांति।